ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल विचार हमारा चल रहा था कि पांच कोशों से मैं कैसे अतीत हूँ। हमने विचार किया पहले तीन शरीरों से कैसे हम अलग हैं, फिर पांच कोशों से कैसे अलग हैं। ये क्रम से विचार करेंगे तभी फिर आगे की जो सीढ़ी है आगे का स्टेप मिलता है। पहले पांच भूतों का विचार किया, पांच भूतों से कैसे आत्मा अलग है, न्यारा है। फिर तीन शरीर जो है वो भी पांच भूतों से ही बने हुए हैं, उनका विचार किया। और फिर पांच कोश ये भी अज्ञान का ही कार्य है, उससे भी हम पृथक हैं। तो विचार तो यही करना भी जो कारण है इस प्रपंच का, नाम रूप प्रपंच का कारण है अज्ञान, उसका भी हम अधिष्ठान हैं। तो जो अध्यस्त होता है वो कल्पित होता है, अधिष्ठान होता है आश्रय। उसमें जो उसके आश्रित जो वस्तु रहती है वो उसको अध्यस्त बोलते हैं। तो जो अध्यस्त होता है वो कल्पित होता है, अधिष्ठान सत्य होता है। व्यवहार में भी कोई सत्य चीज होती है, जैसे रज्जू में सर्प है, जब तक व्यवहार है तब तक रज्जू भी सत्य है, अधिष्ठान है सर्प का। व्यवहार काल में सभी चीजें जो है सत्य है। ये जगत व्यवहार काल में जब तक हमारे को ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये जगत सत्य है, ज्ञान के बाद असत्य है, पहले नहीं। तो जब तक ये सत्य है रज्जू तब तक उसमें आश्रित है सर्प, पर सर्प जो है तीनों कालों में हुआ नहीं। रविदास जी महाराज जी ने भी यही दृष्टांत दिया, वो कहते हैं राज पयांग प्रसंग जैसे है। राज मतलब रस्सू, रज्जू, रज्जू रस्सी, पयांग मतलब सर्प। राज पयांग प्रसंग जैसे है, वो कहते हैं जैसे रज्जू में सर्प का प्रसंग है ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। वो वहां पर भी यही बात सिद्ध कर रहे हैं कि राज जैसे रज्जू में सर्प का दृष्टांत है ऐसे ही था ये संसार, पर मेरे को पता नहीं पहले चला, अब कश मर्म जनाया, अब कहते गुरुओं की कृपा हुई तो मेरे को इस रहस्य का पता चला, अब कश मर्म जनाया। तो वहां पर भी यही उन्होंने दृष्टांत दिया रज्जू सर्प का। या एक जगह कहते हैं ना वो कि जौ पे हमना पाप करंता आहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता। वहां पर भी कहते हैं वो, वहां पर भी अभेद ही दिखा रहे हैं कि आपका और हमारा भेद नहीं है। तो पहले जब हम अधिष्ठान को जान लेते हैं तो अध्यस्त का अपने आप ही निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा या परमात्मा इस प्रपंच का अधिष्ठान है, ये उसमें कल्पित है, हुआ नहीं तीनों कालों में, लेकिन जब तक व्यवहार है तब तक सत्य लगता है। जानते हुए भी गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं भी ये जग धुएं का पहार, एक जगह लिखते हैं ना महाराज जी, यह जग धुएं का पहाड़, जैसे धुएं का धूम का पहाड़ दिखता ना, कई बार धूम जाता है तो पहाड़ जैसा लगता है। तो महाराज जी ने यही एक जगह कहा कि यह जग धुएं का पहाड़ तह साचा माने केह विचार, कहते बताओ इसको आपने सत्य कैसे मान लिया, ये तो धुएं के पहाड़ जैसा है, फिर इसको आपने सत्य कैसे मान लिया। भाव अनेक प्रकार से गुरु महाराज ऋषि लोग अनेक प्रकार से हमारे को बार बार बात वही बतलाते हैं, वो हमारी परिपक्वता के लिए, क्योंकि हमारे को अभ्यास बहुत जन्मों का पड़ा हुआ है ना, इसलिए जैसे कैसे वो हमारा अध्यास छूटे बार बार बतलाते हैं। तो अब ये जो पंचम कला है उसमें कहते हैं तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ, आत्मा तीन अवस्था का साक्षी है। तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। उसी का ही इसमें विस्तार है, इस कला में पूरा इसी का ही है कि तीन अवस्थाएं कौन सी हैं, इनसे आत्मा कैसे अलग है, भाव साक्षी कैसे है। साक्षी होता जो प्रकाशित करने वाला, बतलाने वाला। तो तीन अवस्था, अवस्था तीन को साक्षी आत्मा, तीन अवस्थाओं का साक्षी है आत्मा। और अन्वय जाको, अन्वय का अर्थ होता संबंध, सरल शब्दों में अन्वय का अर्थ होता है संबंध। तो या को अन्वय, जिस आत्मा का इन तीन अवस्थाओं में अन्वय है, अन्वय कहते हैं संबंध है। जैसे जागृत, जब जिस समय जागृत अवस्था है उस समय भी आत्मा साक्षी रूप में सब ज्ञानों को प्रकाशित करता है। जो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से हमारे को ज्ञान जितने होते हैं उनको प्रकाशित करता है, अन्वय है भाव, उस समय भी आत्मा है। तो जब स्वप्न अवस्था आती है, निद्रा अवस्था आती है, उस समय भी इंद्रिय भले नहीं होते, लय हो जाते हैं, बाहर जो बाह्य इंद्रिय हैं वो अंतःकरण केवल होता है, उस समय भी आत्मा वहाँ पर है। और जब निद्रा से आगे गाढ़ सुषुप्ति होती, गाढ़ निद्रा होती है, उस समय भी बाकी इंद्रिय और अंतःकरण सब अपने कारण में अज्ञान में चले जाते हैं, तब भी उस समय आत्मा है। तो ये कहते हैं कि अन्वय है आत्मा का। और अन्वय का एक और भी दृष्टांत है, अन्वय को समझने का अर्थ होता है कि जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। ये तो हमारे को मालूम है ना, जहाँ में धूम होगा, जहाँ में धुआं होगा वहाँ अग्नि अवश्य होगी। तो इसको अन्वय कहते हैं कि जहाँ जहाँ अपना अधिकरण रहे वहाँ पर रहना अन्वय होता है। अधिकरण मतलब आधार, धुएं का आधार कौन है, अग्नि। तो जहाँ जहाँ पर अग्नि रहती है वहाँ वहाँ पर धुआं रहता है। तो जहाँ पर धुआं रहता है वहाँ अग्नि रहती है। धुआं तो अग्नि को छोड़ के भी रहता है, कह जाते छोड़ देता है कई बार। जैसे दृष्टांत बताते हैं, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय है। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, यहां पर जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। लेकिन यहां अग्नि है वहां धूम है नहीं है। धूम अपने, धूम व्यभिचारी है, वो छोड़ देता है। व्यभिचारी का अर्थ होता है जो अपने अधिकरण को छोड़ देता है। अग्नि व्यभिचारी नहीं है, धुआं व्यभिचारी है। जैसे आपने देखा होगा जो लोहार जब जहाँ बनाते हैं ना, वहाँ पर जब वो एक लोहे के पिंड को तपाते हैं, जब बिल्कुल लाल कर देते हैं, वहाँ धुआं कहाँ होता है। उसको तपा हुआ आपने देखा होगा ना, जो लोहा का पिंड होता है तो उसमें धुआं नहीं होता, तो धुआं छोड़ देता है। तो वहाँ उसको कहते हैं व्यतिरेक, व्यतिरेक अर्थ था अभाव। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ तो अग्नि है, पर जहाँ अग्नि है वहाँ धूम नहीं रहता, तो व्यभिचारी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर ये तीन अवस्थाएं हैं वहाँ पर आत्मा है, पर अवस्थाएं ऐसी नहीं है। जब जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न है तो जागृत सुषुप्ति नहीं है, जब सुषुप्ति है तब जागृत और स्वप्न नहीं है। तो अवस्थाएं जो हैं आपस में व्यभिचारी हैं, एक दूसरी को छोड़ देती हैं, लेकिन आत्मा व्यभिचारी नहीं है, उसका अन्वय है, वो सभी अवस्थाओं में बराबर रहता है। इसलिए जो व्यभिचारी होता है वो अनित्य होता है, दृश्य होता है। तो ये इतनी बात से स्पष्ट हो गई बात जो हमने करनी है कि अवस्था तीन जो है ये व्यभिचारी हैं। व्यभिचारी जो होता है वो नित्य होता है, कार्य होता है, विनाशी होता है। तो आत्मा जैसे पुष्प में सूत्र है, फूलों में बीच में जैसे सूत्र है ना, जिसके साथ प्रोये होते हैं, माला जिसको बोलते हैं, जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फूलों के बीच में धागा है, वो सभी फूलों के साथ उसका संबंध है। लेकिन फूल अलग अलग हैं, जैसे मणके हैं, जो मणके हैं उनके अंदर जो सूत्र है, जो धागा है, उसका सभी मणकों के साथ संबंध है। पर मणके एक दूसरे के साथ संबंध नहीं, अलग अलग हैं। वो धागा निकाल दो तो मणके सब अलग अलग हो जाएंगे, वैसे भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार है ये जो अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अलग अलग हैं। जब जागृत है तो स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। जब स्वप्न है तब जागृत सुषुप्ति नहीं है, परंतु आत्मा सभी में एक है। इसी से हो गया कि आत्मा इन तीनों का साक्षी है, अवस्था व्यभिचारी है। तो पहला इन्होंने कहा कि आत्मा का अन्वय है इन तीनों अवस्थाओं में, अनुसूत है, प्रोया हुआ है। फिर कहते हैं व्यभिचारी अवस्था, आगे कह दिया कि ये अवस्था तीन जो है व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता कि एक दूसरे के साथ नहीं रहती, छोड़ देती एक दूसरे को। वो ही कहते हैं व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो, इन अवस्थाओं का आपस में व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ होता अभाव, ना रहना। अन्वय का अर्थ होता भी रहना और व्यतिरेक का अर्थ होता अभाव। तो ये तीनों अवस्था एक दूसरे में नहीं रहती। आपके समझ में आ रही बात कुछ के नहीं? जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्था है ना, और तीनों अवस्था जब जिस समय हम जागते हैं उस समय स्वप्न नहीं ना है, ना सुषुप्ति है। जब हम स्वप्न में चले जाएंगे, निद्रा में चले जाएंगे, सो जाएंगे, तो जागृत नहीं रहेगी, सुषुप्ति भी नहीं होगी। जब सुषुप्ति में पहुंच जाएंगे तो जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, परंतु हम तो है ना सब जगह। हमला आत्मा, आत्मा तीनों अवस्थाओं में है। तो फिर कहते हैं त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार जहां, अब ये तो बता दिया कि अवस्थाएं जो है व्यभिचारी है आपस में, और आत्मा का सबके साथ संबंध है। आगे आप बताने लगे हैं कि ये अवस्था है कौन कौन सी, किसको जागृत कहते हैं, किसको स्वप्न कहते हैं, किसको सुषुप्ति कहते हैं। तो पहले कहते हैं भी त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार जहां, जिस काल में जिस अवस्था में 14 प्रकार की त्रिपुटी से व्यवहार होता है, जिस अवस्था में जिस काल में 14 प्रकार की त्रिपुटी से व्यवहार होता है। त्रिपुटी किसको कहते हैं मालूम है? तीन वस्तुओं का जो संयोग होता है उसको त्रिपुटी, त्रिपुट कहते हैं, त्रिपुट, त्रिपुट, पुट कहते हैं जो संघात होता है, इकट्ठ होता है। जहां तीन, जैसे ये दो मोबाइल हैं, एक और रख देंगे तो तीन मोबाइल जो इनका त्रिपुट हो जाएगा, तीन का संघात हो जाएगा। तो जहां पर कहते हैं कि चार, चार वस्तु रख देंगे तो चार प्रकार का त्रिपुटी हो जाएगी, चार प्रकार की। तो ये कहते हैं कि चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14 प्रकार की त्रिपुटी, 14 चीजें हैं उनको, उनके तीन पट बनाएंगे अलग अलग। उसमें से पांच ज्ञान इंद्रे और पांच कर्म इंद्रे और चार अंतःकरण, तो हो गए 14। ये 14 जो त्रिपुटी है इनके द्वारा जहां पर व्यवहार होता है, इनके द्वारा व्यवहार मतलब हम ज्ञान जहां पर करते हैं, इनके द्वारा, इन 14 को मिला करके हमारे को जो जो ज्ञान होते हैं ना, जिस काल में स्पष्ट रूप से व्यवहार होता है इन 14 के द्वारा, हम किसी भी घटपट आदि विषय को जानते हैं तो वहां पर हमारे इंद्रिय भी रहते हैं और इंद्रियों के देवता भी रहते हैं और विषय भी रहते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा व्यवहार, जहां पर इतना स्पष्ट व्यवहार होता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत में हमारे इंद्रिय भी हैं और विषय भी हैं और उनके देवता भी हैं। तो ये कहते हैं कि त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार जहां स्पष्ट, स्पष्ट रूप में जहां व्यवहार होता है, अस्पष्ट में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में जहां व्यवहार होता है सो जागृत, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। फिर वो कैसी है? झूठ, झूठ मतलब झूठ, मिथ्या। ये जो जागृत अवस्था है यह मिथ्या है। और दृश्य ध्यायो, इसको महात्मा लोगों ने दृश्य कहा है। तो ये अवस्था भी दृश्य कोटि में आ गई तो हम दृष्टा रहे, अवस्था भी प्रपंच में आ गई ना, प्रपंच में आ गई, प्रपंच में जो भी आएगा वो दृश्य रहेगा, हम दृष्टा रहेंगे। ये जागृत अवस्था झूठ मतलब मिथ्या है और दृश्य है। जो मिथ्या होता है वह दृश्य होता है, जो दृश्य होता है वह कार्य होता है, जो कार्य होता वह विकारी होता, विनाशी होता, परिच्छन्न होता है। सभी उसमें लग जाएंगे, ये जितने मतलब हमने पीछे पढ़े सब उसी में लगेंगे। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि देखे सुने वस्तु के संस्कार से सृष्टि, जहां जिस काल में जिस अवस्था में इस जन्म के अथवा जन्मांतर के देखे अथवा सुने जितनी वस्तु हमने सुनी है इस जन्म में अथवा कई पूर्व जन्मों में जो हमने कहीं सुना है या देखा है उस सुने और देखे के संस्कारों से जहाँ पर सृष्टि होती है उस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। जो हमारे को स्वप्न होता है ना वो जो भी हमारे को दिखाई पड़ता है वो या तो हमने इस जन्म में देखा है या किसी पूर्व जन्म में देखा है या सुना है, दोनों तरह का ही हो, सुना हो तब भी स्वप्न आ जाता है, देखा हो तब भी स्वप्न आ जाता है। कई बार हमने देखा कि हमारा सिर काट दिया किसी ने, कई बार स्वप्न में ऐसा भी होता कि हमारा सिर कट गया, लेकिन सिर भी कटा है तब भी हम देख रहे हैं। एक सिर कटे वाला शरीर है, एक उसको देखने वाला शरीर है, फिर भी देख रहे हैं उसको। तो प्रकाश तो हम ही कर रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहा है वो पूर्व जन्म का सुना देखा हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। इसलिए ये जो फिर आगे ये बात कहते हैं कि अस्पष्ट प्रतीति, पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के देखे सुने वस्तुओं के संस्कारों से जहाँ सृष्टि होती है परंतु उसका व्यवहार उसका ज्ञान कैसा अस्पष्ट, जैसे हम जागृत में देखते हैं ऐसा नहीं होता है क्योंकि जागृत वाली इंद्रिय वहाँ नहीं होती तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता, अस्पष्ट रूप से व्यवहार होता है जहाँ पर, उसको कहते हैं स्वप्न, उसको स्वप्न कहते हैं। और वह स्वप्न कैसी है, मृषा, मृषा का अर्थ भी मिथ्या, मृषा का अर्थ भी मिथ्या ही होता है। तो मिथ्या लोक गाइयो, ये तो कहते हैं लोगों ने अनुभव करके बताया है, शास्त्र की तो बात ही छोड़ो, स्वप्न को तो लोग भी कहते हैं मिथ्या है। मृषा लोक गाइयो, कहते लोगों ने भी गाया है, लौकिक व्यवहार में भी लोग कहते हैं स्वप्न मिथ्या होता है। तो शास्त्र तो कहता ही कहता है कि स्वप्न मिथ्या होता है। और तीसरी आ गई अब सुषुप्ति, तो कहते हैं कि सकल कर्ण लय होए जहां, सारे जो हमारे कर्ण भाव इंद्रे, जो कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे अथवा अंतःकरण, ये सभी जिस काल में जा करके अपने कारण में लय हो जाते हैं उस काल को उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था बतलाई, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जहाँ पर स्पष्ट रूप में व्यवहार होता है उसको जागृत कहते हैं और जहाँ पर संस्कारों के द्वारा रचित जो सृष्टि दिखाई पड़ती है स्पष्ट रूप में उसको स्वप्न कहते हैं। और जिस काल में जा करके सभी इंद्रियों अपने कारण में लय हो जाते हैं उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो पीताम्बर जी महाराज कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, तुरीय ही प्रत्यक प्रत्यायो, तुरीय जो इनका कहते हैं कि साक्षी वो है जो तुरीय भाव प्रत्यक अर्थ था अंतर आत्मा, जो अंतर आत्मा है दामा स्वामी जी बोला साथ में, यहां पर ले हमारे जी नहीं मारा जी, आओ आओ इधर आओ आप। यहाँ पर आइए महाराज जी, मेरे पास दूसरे वाला हमारा जी है तो यही है लेकिन टीका दूसरी है, बात वही है।
मतलब केड़ी कला,
ये कला महाराज जी चल रही पंचम अभी शुरू की है, तीन अवस्था का मैं साक्षी, पांचवी जी। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं, अब स्वामी जी के होते हमारा बोलना तो बनता नहीं है लेकिन फिर भी जब विद्यार्थी होता उसको तो अपने गुरुओं के पास बोलना चाहिए
क्या।
हाँ तीन अवस्था का मैं साक्षी महाराज यही चल रहा था, हाँ हाँ जी यही महाराज जी, मैंने कहा आपके होते हमारा बोलना तो बनता नहीं है,
मैं चले जाता।
नहीं 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 नहीं,
नहीं होना,
बड़े लोगों के होते बोलना नहीं चाहिए,
मैं वही कहना बड़ा लोग बाहर खड़ा हो गया ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ तो तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ यही वर्णन कर रहे हैं। तो तीन अवस्था का विचार संक्षेप में किया हमने कि आत्मा तीनों अवस्था का साक्षी है क्योंकि आत्मा का अन्वय है तीन अवस्थाओं में, अनुसूतपना है, व्यापकता है आत्मा की। ये अवस्थाएं व्यभिचारी हैं आपस में और अब आत्मा व्यापक है, सब में अनुसूत है। जैसे पुष्प में धागा रहता, पुष्पों में, मणियों में, उस प्रकार। तो तीन अवस्था का भी बता दिया कि 14 प्रकार की जो त्रिपुटी है उसके द्वारा जिस काल में व्यवहार होता, स्पष्ट होता व्यवहार, ज्ञान होता है विषयों का, उस काल को कहते जागृत अवस्था। और जिस काल में इस जन्म के अथवा पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, देखी सुनी वस्तुओं के संस्कार, उसके द्वारा रचित सृष्टि जहाँ पर दिखाई पड़ती है, अस्पष्ट व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता, उसको कहते हैं स्वप्न। और फिर उसके बाद आगे हमारी सुषुप्ति अवस्था। तो जिस काल में जाकर के हमारे बाह्य अथवा अंतः जो करण हैं उनका लय हो जाता अपने कारण में, अज्ञान में, उस अज्ञान को जिस अवस्था में जाना जाता है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो ये तीन अवस्था है, इन तीन अवस्थाओं जो आपस में व्यभिचारी हैं, एक के साथ दूसरी नहीं रहती, परंतु आत्मा इन तीनों के साथ रहता है। इसलिए आत्मा प्रत्यक, प्रत्यक मतलब अंतरात्मा, सबको जानने वाला, उनके अंतर रहने वाला, उनसे सूक्ष्म, उनसे परे, ऐसा जो आत्मा है उसको साक्षी कहते हैं। अब टीका में विस्तार से इसको समझाएंगे, टीका में जाकर के ये कहते हैं कि तीन अवस्थाएं कौन सी हैं। अभी अभी जो हमने विचार किया बात तो वही बतला रहे हैं कि तीन अवस्थाएं तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर कहते हैं कि ये तीन अवस्थाएं जागृत अवस्था इसमें से क्या है। सबसे पहले जागृत अवस्था का विवेचन कीजिए। तो ये कहते हैं कि संस्कृत में भी इसके लक्षण आए हैं कि इंद्रियार्थोपलब्धि जागृतम, ऐसा पंचदशीकार ने कहा है। पंचदशीकार का ये जागृत अवस्था का लक्षण है इंद्रियार्थोपलब्धि जागृतम, इंद्रियों के द्वारा, अर्थ कहते हैं विषय को, इंद्रियों के द्वारा जहाँ पर अर्थ भाव विषय की उपलब्धि होती है। विषय की उपलब्धि का मतलब विषय के ज्ञान का, जहाँ पर ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं जागृत। अर्थ का अर्थ होता है विषय, अर्थ को द्रव्य भी कहते हैं, धन भी कहते हैं, लेकिन अर्थ का अर्थ विषय होता है, यहाँ पर उसका अर्थ है विषय। और इंद्रिय के द्वारा जहाँ पर विषय का साथ संयोग हो करके उनकी उपलब्धि होती है, उनका ज्ञान होता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और फिर कहते हैं कि उसके बाद उत्तर देते हैं जागृत अवस्था क्या है। तो 14 इंद्रिय इसमें अब बताएंगे भी कैसे कैसे जागृत अवस्था में ज्ञान होता है, इंद्रिय, विषय और उनके देवता, ये हमारे को बता करके तभी जागृत का हमारे को स्वरूप पता चलेगा कि जागृत में कौन कौन सी सामग्री है जिसको मिला करके हम जागृत बोलते हैं। तो कहते हैं कि 14 इंद्रिय हैं उसमें। पहले बताया था 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतःकरण मिला करके 14 हुए। तो 14 इंद्रिय इनको बोलते हैं अध्यात्म, अध्यात्म बोलते हैं, इनका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीन शब्द आते हैं। तो इंद्रियों को कहते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ, जब तक हम शब्द का अर्थ नहीं जानते तब तक उसका स्पष्टता होती नहीं है। अध्यात्म कह दिया भी 14 इंद्रियों का नाम है अध्यात्म, तो नाम का अर्थ भी पता होना चाहिए कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। तो अध्यात्म का अर्थ ये है कि स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न अंतःकरण सहित इंद्रिय जन्य ज्ञान, जागृत जो कहते हैं कि स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न इंद्रिय जन्य जो ज्ञान, हाँ, अंतःकरण सहित इंद्रिय जन्य जो ज्ञान और इंद्रिय जन्य ज्ञानों के जो संस्कार, स्वप्न का भी नहीं, सुषुप्ति का भी नहीं, उससे अलग जो इन अंतःकरण के सहित इंद्रिय जन्य जो ज्ञान और उन ज्ञान के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का जो आधार काल है, जो उन संस्कारों का आधार काल है उसको तो कहते हैं जागृत, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ होता है कि आत्मा को आश्रित करके जो वर्तता उसको कहते हैं अध्यात्म। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण है, ये आत्मा को आश्रय करके व्यवहार करते, इसलिए इनको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा अधि इति अध्यात्म, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। आत्मा में, आत्मा ने जिन आत्मा को अधिकरण बना करके जो वर्तते हैं उनको कहते हैं अध्यात्म। तो ये सभी जो इंद्रिय हैं ये आत्मा के आश्रित होकर के काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है अध्यात्म। तो 14 इंद्रिय हुए अध्यात्म। उसके बाद उनके 14 देवता हुए। जो देवता है उनको कहते हैं अधिदेव, अधिदेव उनको अधिदैव कहते हैं, अधिदैव। तो ये कहते हैं कि जो आपने पहले बताया कि आत्मा को आश्रित करके जो होते हैं उनको, तो आपने कहा कि उनको बोलते हैं अध्यात्म। आत्मा को आश्रय करके वर्तने वाली इंद्रियों को आपने कहा अध्यात्म, और देवता को आपने कहा अधिदैव। तो अधिदैव का अर्थ क्या हुआ? तो ये कहते हैं कि जो स्वसंघात से भिन्न होता है, जैसे संघात है देवताओं का, स्वसंघात से भिन्न और इंद्रियों का अविशेष होता है, उसको अधिदेव कहते हैं। जो देवता लोग हैं वो संघात से भिन्न हैं और हमारे इंद्रियों से अगोचर हैं, हमारी इंद्रियों के विषय नहीं हैं। तो जो संघात से भिन्न होता है और इंद्रियों का अविशेष होता है उसको कहते हैं अधिदैव। तो जो देवता हैं वह स्वसंघात से अलग हैं और हमारी इंद्रियों के अविशेष हैं, इसलिए उनका नाम हुआ अधिदैव। तो तीसरा है उनके जो 14 विषय हैं उनको कहते हैं अधिभूत। अधिदेव और अधिदैव के बाद हुआ अधिभूत। तो जो अधिभूत है वो क्या है? वो स्वसंघात से भिन्न जो हो और हमारी इंद्रियों का विषय हो उसको कहते हैं अधिभूत। तो जो जितने भी घटपट आदि जितने विषय हैं वो स्वसंघात से भिन्न हैं। जो जो विषयों का संघात है, संघात मतलब इकट्ठ समुदाय, उस समुदाय से अलग हैं और हमारी इंद्रियों का विषय हैं, तो वो होए अधिभूत। तो हमारे इंद्रियों का नाम हुआ अध्यात्म, और जो देवता है उनका नाम हुआ अधिदैव, जो विषय है उनका नाम हुआ अधिभूत। तो ये जो है ना, इसके द्वारा व्यवहार होता है ना, ये तीनों होने चाहिए तभी व्यवहार होता है। अभी उसको बता रहे हैं आगे कि कैसे कैसे इनके द्वारा व्यवहार होता है। ये पहले तो हमारे को यही बताया कि ये 14 इंद्रिय अध्यात्म हैं और उनके देवता अधिदैव हैं और विषय जो है उनको कहते हैं अधिभूत। तो ये क्या हो गए मिला करके? ये 42 तत्व हो गए। इन 42 जो तत्व हैं इस अवस्था में व्यवहार जिनके इनके द्वारा होता है ना जिस अवस्था में, उसको कहते हैं जागृत। 42 हो गए ना, 14 हुए हमारे इंद्रिय, 14 हुए उनके देवता, 14 हुए विषय, तो ये मिला करके 42 हुए। तो ये 42 तत्वों के द्वारा जिस अवस्था में व्यवहार होता है उसको जागृत कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि 14 इंद्रियों का प्रश्न किया तो हमने जान ही लिया कौन कौन से हैं। कल भी बताया था, पहले भी आपको मालूम है, फिर भी एक बार याद करना अवश्य चाहिए। वहाँ गुरुजी लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को याद करना उसको बार बार फिर बोलना चाहिए। तो 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से हैं? त्वचा है पहले, पहले श्रोत्र, फिर त्वचा, फिर चक्षु, फिर रसना, फिर घ्राण। ये हो गए 4, 5 हो गए ज्ञान इंद्रिय। श्रोत्र का अर्थ है कान कह देते हैं, और त्वचा मतलब चमड़ी, चक्षु मतलब आँख, और रसना तो हम जानते ही हैं, जीभा भी बोलते हैं, रसना भी बोलते हैं, और उसके बाद है घ्राण मतलब नासिका। ये हो गए हमारे ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय कौन है? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। वाक मतलब वाणी, और पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पांव, उपस्थ और वायु ये हो गए कर्म इंद्रे और मन बुद्धि चित अहंकार ये अंतःकरण तो मिला करके हो गए 14 और देवता आगे खुद बताएंगे इनके कौन कौन से हैं। यदि अभी संक्षेप में जानना भी चाहें तो श्रोत्र का देवता कौन है? दिक्पाल, दिक्पाल बोलते हैं। श्रोत्र का देवता है दिशा, दिक्पाल। और श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द। इस त्रिपुटी को थोड़ा रखेंगे दिमाग में तो फिर रहेगा। और त्वचा का देवता कौन है? वायु, वायु है। चमड़ी का देवता है वायु। और वायु का विषय क्या है? स्पर्श करना। और फिर चक्षु का कौन देवता है? सूर्य। और उसका उसका विषय क्या है? रूप। और जिह्वा का रसना का देवता है वरुण। और इसका विषय क्या है? रस लेना। और घ्राण का देवता है अश्विनी कुमार। और उसका विषय क्या है? गंध। गंध है ना घ्राण का। और फिर वाक आ गया। ये तो कर्म इंद्रियों इंद्रिय उनके देवता हो गए ज्ञान इंद्रिय। और आगे आगे कर्म इंद्रिय, उससे पहला इंद्रिय है वाक मतलब वाणी। वाणी का देवता है अग्नि। और वाणी का विषय क्या है? बोलना, वाचन क्रिया, वचन करना, बोलना। और दूसरा विषय है कर्म इंद्रिय। दूसरा कौन सा है? हस्त। हस्त मतलब हाथ। उसका कौन देवता है? इंद्र। और हाथ का काम क्या है? लेना देना, लेना देना या स्पर्श करना। और उसके बाद है पाद। पाद का विषय है चरना, आना जाना। और उसका देवता क्या है? वामन, वामन। और फिर आ गया उपस्थ। उपस्थ का देवता कौन है? प्रजापति। हाँ, ब्रह्मा प्रजापति एक ही बात है। और उसके बाद गुदा। गुदा का देवता है याम। और फिर आ गई मान। आ गया मन का देवता है चंद्रमा। और मन का विषय क्या है? संकल्प विकल्प करना। और बुद्धि का देवता है ब्रह्मा। बुद्धि का विषय क्या है? निश्चय करना। और चित्त का देवता है वासुदेव। और उसका विषय क्या है? चिंतन करना। और अहंकार का देवता है रुद्र। हाँ, उसका है विषय अहमपना। अहम अहम ही इसका विषय है। ये हो गए 14 प्रकार की जो बताई थी त्रिपुटी। आप प्रश्न ये करते हैं कि 14 इंद्रियों के 14 विषय भी आपने बता दिए, 14 इंद्रिय भी बता दिए। अब कहते हैं कि अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीन तीन मिलकर क्या कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो अध्यात्म आदि जो तीन है पहले बता दिया कि इनको मिलकर क्या कहते हैं? त्रिपुटी। मिलकर के इनको कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी संद में पेख्या कट हूँ कट जागी, एक पंक्ति आपने सुनी होगी। नहीं सुनी स्वामी जी? आती ना तो एक पंक्ति आती है, त्रिपुटी संद में पेख्या कट हूँ कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी सब माह त्यागी। ये पंक्ति है त्रिपुटी संद में पेख्या। संद मतलब संधि। जो हमारे को साक्षात्कार का चमत्कार हम कहाँ देखेंगे? हम कौन है? साक्षी कैसे जानेंगे अपने आप को? त्रिपुटी की संधि में, संधि में जानेंगे ना। जब जैसे त्रिपुटी तीन है ना, मतलब देवता है, इंद्रिय है और विषय है, तो इन त्रिपुटियों की संधि में जब एक त्रिपुटी हमारी जो है वो समाप्त हुई, अभी दूसरी त्रिपुटी उत्पन्न नहीं हुई, तो बीच में क्षण मात्र के लिए जो संधि होती है, संधि मतलब जोड़, बीच वाला समय, जैसे हम संध्या कहते हैं ना, संध्या, तो संध्या का अर्थ क्या है? जो दिन है वो समाप्त हो गया, रात्रि भी आने वाली है, तो बीच में जो समय उसको संध्या कहते हैं। उसी प्रकार त्रिपुटियों के बीच में जो संधि है वहां पर कहते हैं देखो अपने आप को साक्षी रूप में। ऐसे थोड़ी देखेंगे, गुरबाणी कह रही है ये बात। त्रिपुटी संध में पेख्या, संधि दे विच मैं कहते मैंने अपने आप को देखा, घट हूँ घट जागी, तब मेरे को घट घट में अपना दर्शन उस समय हुआ, त्रिपुटियों की संधि में। आगे पीछे नहीं पता चलता था, तो हम त्रिपुटियों को देखते हैं
उसके अंतर में
हाँ, अंतर कहो, उसके बीच में, दोनों के बीच वाला जो समय है उसमें, हाँ उसमें गैप में देखो अपने आप को, तब हम साक्षी रूप जानेंगे अपने आप को। जैसे श्वास का चिंतन करते हैं, जो ध्यान कराते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं श्वास आपने ऊपर किया, ऊपर खींचा, तो अभी श्वास को नीचे मत छोड़ो। जब रोकेंगे ना श्वास को थोड़ी देर के लिए, ऊपर जड़ा आपने खींचा श्वास तो रोका, तो उस रोके हुए और नीचे आने के बीच में अपने आप को देखो। श्वास का जो करते ना चिंतन, वो यही होता है जो हम कहते प्राणायाम करना है। प्राणायाम का अर्थ यही होता कि श्वास आपने ऊपर खींचा, अभी नीचे नहीं आया, और बीच वाला जो समय है उसमें अपने आप को देखो, वो मैं हूँ। वैसे तो हम श्वास को देखते हैं, और बिना श्वास के जब अपने आप को देखते हैं, वो है हमारा स्वरूप, वो है साक्षी। तो गुरु महाराज ने यही बात कही कि त्रिकुटी संध मैं पेख्या घट हूं घट जागी। ऐसी बुद्ध समाचरी, ऐसी बुद्धि जब ब्रह्माकार साक्षी रूप वाली बुद्धि मेरे बीच में आई, घट माहे त्यागी। फिर सभी को घट घट में हर जुग से संतन का उपकार, तब मैं उसका दर्शन किया। यही बात यहां पर आ रही है त्रिपुटी की। तो ये 14 प्रकार की त्रिपुटी है। उसके बाद दूसरा ये कहते हैं, प्रश्न दूसरा करते हैं कि इन त्रिपुटियों का स्वभाव क्या है, क्या इनका स्वभाव मतलब स्वरूप क्या है इनका। तो ये कहते हैं कि तीन पदार्थों की एक त्रिपुटी होती है। तीन पदार्थ मिल जाएंगे एक जगह तो त्रिपुटी मतलब पुट उनका इकट्ठ। तो ये कहते हैं कि उन तीन पदार्थों में से यदि कोई एक पदार्थ भी ना रहे तो ज्ञान नहीं होता। जो तीन इकट्ठे रहेंगे तब ज्ञान होगा। कैसे, जैसे मानो यहां पर इंद्रे और देवता दोनों हैं पर विषय नहीं है, तो ज्ञान नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा। इंद्रिय भी है देवता भी है पर विषय नहीं है, तो व्यवहार नहीं होगा। इनका स्वभाव ऐसा है, यदि विषय है इंद्रिय है देवता नहीं है तब भी व्यवहार नहीं होगा। तीनों इकट्ठे चाहिए ना तभी व्यवहार होता है। इसमें से एक भी यदि नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा। उसके बाद कहते देवता और विषय होवे इंद्रिय ना हो तब भी व्यवहार नहीं होता। भाव तीन जब मौजूद रहेंगे वर्तमान रहेंगे तभी व्यवहार होगा, नहीं तो नहीं होता। ये कहते कि ये तो आपने त्रिपुटी का स्वभाव बताया कि ये जो तीनें जब रहती हैं तभी व्यवहार होता, नहीं तो नहीं होता। ये इनका स्वभाव है भी तीनों रहेंगी तभी ये ज्ञान करा सकेंगी। तो इनसे अलग मेरा क्या स्वभाव है, मेरा मतलब साक्षी, मेरा क्या स्वभाव है। ये तो ऐसी हैं कि एक इनमें से ना रहे, एक का व्यभिचार हो जाए तो ये दर्शन नहीं कराती किसी चीज का, व्यवहार नहीं कराती। मेरा स्वभाव इनके उल्ट है। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, जब त्रिपुटी तीनों होती है तब भी मैं जानता हूं, पूर्ण होती है तीनों तब मैं इनको जानता हूं, जब जब पूर्ण नहीं होती भावन इसमें एक कम है तब भी मैं जानता हूं। ये तो नहीं करा सकती काम, एक इनमें से काम हो जाए तो ये ज्ञान नहीं करा सकती। पर मैं इनको तीनों को जब पूर्ण होती तब भी जानता हूं, जब ये तीनों नहीं है तो मैं से दो हैं या एक हैं तब भी मैं जानता हूं। इसलिए कहते हैं कि मैं इनसे अलग हूं। व्यवहार जब ये करती हैं तब भी मैं जानता हूं, जब ये नहीं व्यवहार करती तब भी मैं इनको जानता हूं। तो इसलिए मैं, मेरा स्वभाव इनसे अलग है। ये मेरा स्वभाव है कि मैं इनके अभाव को भी जानता हूं, इनके रहते हुए इनको भी मैं जानता हूं। ये कहते हैं भी इस कथन करने से हुआ क्या, इसका तात्पर्य तो बताइए। आपने दोनों का स्वभाव बता दिया कि त्रिपुटी का स्वभाव ऐसा है आपका ऐसा है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ। सिद्ध ये हुआ कि त्रिपुटी से जिस अवस्था में व्यवहार चलता है ना उसको कहते हैं जागृत अवस्था। बताना तो इतना ही था ना कि जागृत अवस्था क्या है, तो उसके लिए ये सारा कुछ बताना पड़ा कि जागृत अवस्था उसी को कहते हैं जिस अवस्था में 14 प्रकार की त्रिपुटी से व्यवहार होता है स्पष्ट रूप में, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। तो ये कहते हैं कि है तो बात जो बता रहे हैं ना सब ऊपर की बातें हैं, ये इन्होंने बहुत सरल करके बताने की कोशिश की है लेकिन फिर भी कठिन पड़ती है। ये बातें सब उपनिषद की बता रहे हैं। ये जो बातें अभी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं ना, जागृत अवस्था में जीव का स्थान कौन है, उसकी वाचा उसकी वाणी क्या है, भोग क्या है, शक्ति क्या है, गुण क्या है, ये सब मांडुक्य उपनिषद की बात है। उसमें सब खोल करके दिया है, एक एक श्लोक में एक एक बात को कहा है। तो यहाँ पर यही बात ला करके रखी है उन्होंने कि जागृत अवस्था में भाव जे एक विभाग कर करके बताते हैं ना, है तो कुछ नहीं है लेकिन बताने के लिए खुलना पड़ता है। तो जीव आपने कहा कि जीव जो जीव है वो जागृत अवस्था में कहाँ रहता है, जब तीन अवस्थाएं अलग अलग हैं तो उस समय उनके रहने का जीव भी तो कहीं रहता होगा ना, जागृत अवस्था में कहाँ रहता है, स्वप्न में कहाँ रहता है, सुषुप्ति में कहाँ रहता है। तो ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में जीव का स्थान बताइए कौन सा है, और जागृत अवस्था में उसकी वाणी कौन सी है। चार प्रकार की वाणी होती ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो उसकी वाणी कौन सी है जागृत में। फिर कहते हैं कि उसका भोग क्या है, कौन सा भोग करता है वो, और उसकी शक्ति क्या है, क्रिया शक्ति है कि ज्ञान शक्ति है कि कौन सी शक्ति है, गुण कौन सा है जागृत अवस्था में ये बताइए, और जागृत में अभिमान करने वाले जीव का नाम क्या है। ये सभी बातें बताइए जागृत अवस्था का, तभी हमारे को पता चलेगा, उससे अलग हम तभी हो पाएंगे जब हम उसका परिचय हमारे को हो जाएगा कि जागृत अवस्था ये हुई, उसमें जीव जहाँ रहता है, तो तभी हम अपने आप को जानेंगे कि ये जीव जहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में जीव का स्थान क्या है, नेत्र। जागृत अवस्था में जो जीव है वो कहाँ रहता तो व्यापक है पूरे में, लेकिन एक मुख्य स्थान उसका माना गया है नेत्र, नेत्र में रहता है। और उसकी वाणी क्या है, बैखरी। बैखरी किसको कहते हैं, बोलने को तो कहते ही हैं, व्यक्त बोलने को कहते हैं, व्यक्त स्पष्ट रूप में जहां बोला जाता है। बोलते तो हम जीवा से ऊंचा नहीं बोलेंगे तो अंदर बोलते हैं ना धीरे धीरे, वो भी तो बोलना ही है, लेकिन बैखरी वाणी उसका नाम है जहां पर व्यक्त रूप से बोला जाता है, स्पष्ट रूप से हम भी सुन सके दूसरा भी सुन सके, उसको कहते हैं बैखरी। जब हम अंदर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बस बैखरी के बाद कौन सी वाणी आती है, बैखरी। चार प्रकार की वाणियां भी बताई थी ना, तो बैखरी के बाद कौन सी वाणी होती है, मध्यमा। मध्यमा में भी हम बोलते हैं लेकिन अंदर बोलते हैं, हमारे को पता चलता है दूसरे को नहीं पता चलता, जहां पर हमको ही पता चले दूसरे को पता चले उसको कहते हैं बैखरी। तो ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में जीव रहता है नेत्र में और उसकी वाणी है बैखरी। और भोग उसका क्या है, स्थूल भोग है, स्थूल रूप से भोगता, स्थूल विषयों को भोगता है, क्योंकि स्थूल विषय है ना सामने, स्वप्न में विषय स्थूल नहीं होते तो भोग कहां से स्थूल होगा, जागृत में विषय स्थूल हैं इसलिए स्थूल विषयों का भोग करता जो सामने दिखाई देते हैं। तो ये कहते हैं कि स्थूल भोग है, और क्या है शक्ति उसकी, क्या है क्रिया, क्रिया उसकी शक्ति है। और गुण कौन सा है, रजोगुण, बिना रजोगुण के प्रवृत्ति नहीं होती, रजोगुण प्रवृत्ति का कारण है। तो इसके जीव का जो स्थान उसमें गुण है रजोगुण है, रजोगुण ही प्रवृत्ति का कारण है, जो रजोगुण है प्रवृत्ति का कारण है, जो सतोगुण है वो ज्ञान की तरफ ले जाता है, उससे उससे मतलब दैवी संपदा की हमारे अंदर उन्नति होती है। जो तमोगुण जब आता है तो क्या आता है, आलस, निद्रा, प्रमाद, मतलब पड़े रहना, कोई मतलब किसी मान को कामना, और रोकता है हमारी प्रवृत्ति को, तमोगुण प्रवृत्ति को रोकता है और रजोगुण प्रवृत्त कराता है। तो इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में जीव का गुण कौन सा है, रजोगुण। तो फिर कहते हैं भी जागृत अवस्था के अभिमानी जीव का नाम क्या है, विश्व, विश्व बोलते हैं। ये सभी चीजें बतला दी कि नेत्र स्थान में रहता है, उसकी वाणी बैखरी है, और भोग स्थूल है, उसकी शक्ति कौन है क्रिया, और गुण है उसका रजोगुण। और उस ऐसे जीव का नाम क्या है जो जागृत अवस्था में अभिमान करता है, उसका नाम क्या है, विश्व। तो ये कहते हैं कि पांच भौतिक संसार को विश्व कहते हैं। विश्व किसको कहते हैं, ये जो पांच भौतिक संसार है इसको विश्व कहते हैं। और इस विश्व का भोगता होने से जागृत के अभिमानी जीव को भी विश्व कहते हैं। ये पांच भौतिक संसार है विश्व, तो इस विश्व का जागृत अवस्था में अभिमानी होने से इसको जीव को भी कहते हैं विश्व। तो जागृत में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तीनों का अभिमान होता है। ये थोड़ी कि वो शरीर चले गए नहीं है, जागृत में भी सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर भी है। इस जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों होते हैं, तीनों का अभिमानी होता है जीव। तो विश्व पद का अर्थ संपूर्ण लो, अर्थात त्रय देह उपाधि वाला विश्व में पूरा ले लिया ना संसार, तो संसार में तीनों शरीर भी आ जाएंगे। तो विश्व का अर्थ है कि तीन शरीर उपाधि वाला जो जीव है, ऐसा जो जीव है उसका नाम विश्व है। ये इन्होंने जागृत अवस्था में उनके बताए गुण क्या है, उसकी शक्ति क्या है, क्रिया क्या है, ये सब बताया। अब कहते हैं कि जागृत अवस्था आपने बतला दी हमारे को खोल करके, तो जागृत अवस्था को बतलाने से क्या हमारे को तात्पर्य बताइए, इसका क्या निकला, इसमें से रिजल्ट क्या हुआ। कहते हैं कि जागृत अवस्था यदि रहती है तब भी मैं जानता हूँ, ऐसी जागृत अवस्था जब नहीं रहती तो तब भी मैं जानता हूँ, उसके अभाव को भी जानता हूँ। इसलिए जागृत जो जागृत अवस्था है ये मैं नहीं हूँ और ना ही यह मेरी जागृत अवस्था है, मैं इस जागृत अवस्था का जानने वाला दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, जैसे मैं घाटपट का दृष्टा हूँ। इस प्रकार ये जागृत अवस्था का जब हम चिंतन करेंगे तो तब उससे अलग होंगे। यहाँ पर जागृत अवस्था का विवेचन किया, फिर कहते हैं कि स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ, ये तो आपने बतला दिया, अब आगे बताइए कि स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ। तो पहले बताना पड़ेगा कि स्वप्न अवस्था क्या है। तो स्वप्न अवस्था का कहते हैं पंचदशीकार ने जो किया है ना लक्षण, वो कहते हैं कि कर्णेशु उपसंहृतेशु जागृत संस्कार जह प्रत्यह सा स्वप्नावस्था। वो ऐसा कहते हैं कि जो हमारे कर्ण है, इंद्रिय हैं हमारे, जो बाह्य अथवा अंतः, तो जो कहते हैं जो बाह्य कर्ण है, कर्णों का उपसंहार हो जाने पर, उपसंहार मतलब लय हो जाना, बाह्य जो हमारे कर्ण है उनका उपसंहार हो जाने पर, तो जागृत के संस्कार से उत्पन्न, जागृत के जो हमारे संस्कार है उस पे उत्पन्न जो विषय के सहित जो हमारी वृत्ति है उसको स्वप्न कहते हैं। जिस अवस्था में जाकर के हमारे, ये कहते हैं कि कर्णों का उपसंहार हो जाता, कर्ण हमारे बाह्य अंतर नहीं, स्वप्न में बाह्य कर्णों का लय होता है, बाह्य जो हमारे इंद्रिय हैं उनका लय हो जाने पर और जागृत अवस्था में देखी सुनी जो वस्तुएं हैं उनके संस्कार से जो हमारी विषय के सहित वृत्ति उत्पन्न होती है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। यह है स्वप्न अवस्था। इस जन्म की या पूर्व जन्म की जागृत अवस्था में, ऐसा नहीं जानना कि अभी इसी जन्म में देखे, इस जन्म की हो अथवा पूर्व जन्म की जागृत अवस्था में जो भी हमने देखा है, उस देखे सुने वस्तुओं के संस्कार से जहां पर हमारी जिस अवस्था में विषय के सहित हमारी वृत्ति होती है उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। तो ये कहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, फिर भी इसको विस्तार से बताइए। तो कहते हैं कि इस जन्म या पूर्व जन्म की जागृत अवस्था में देखे सुने हुए पदार्थों के संस्कार कहाँ रहते हैं, ये भी तो है ना संस्कार, अभी कहाँ कितने जन्म हमारे को बीत गए, वहाँ के जो संस्कार हैं कहाँ हैं, किस डिब्बे में पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं टिके होंगे ना, वो तभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहते हैं भी कंठ में एक बाल, जैसे बाल होता ना हमारा बाल, तो बाल के हजारवें हिस्से के समान एक कंठ में नाड़ी है, उसको हिता नामक नाड़ी कहते हैं, हिता नामक नाड़ी, बाल जो है इसके हजार से कर दो इतनी बारीक वो नाड़ी है, तो उसमें रहते हैं वो संस्कार। कंठ में बाल के हजारवें भाग के समान बारीक हिता नामक नाड़ी में रहते हैं वो, जो जागृत के संस्कार इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के, तो उन संस्कारों से त्रिका निद्रा काल में प्रातिभासक सत्ता वाले पांच विषय आदि पदार्थ और उनके ज्ञान उत्पन्न होते हैं। वो जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हैं ना, जब निद्रा काल में जाते हैं तो निद्रा स्वप्न हम हमारे को कब होता है, निद्रा कब होती है, जब जीव उस हिता नामक नाड़ी में जाता है ना तभी होती है। तो उस समय कहते हैं वो हमारे को प्रातिभासक सत्ता वाले होते हैं, वो सत्ता भी तीन प्रकार की होती है ना, स्वामी जी ने आपको कई बार बतलाया कि तीन प्रकार की सत्ता होती है, एक व्यवहारक सत्ता होती है, एक प्रातिभासक सत्ता होती है और एक पारमार्थिक सत्ता होती है। कौन कौन से इसके दृष्टांत हैं वो भी आपको स्वामी जी ने बहुत बतलाया कई बार कि परमार्थक सत्ता किसकी है, व्यवहारिक सत्ता किसकी है और प्रातिभासिक सत्ता किसकी है। फिर बताएं एक बार, कहते हैं कि परमार्थक सत्ता तो छोड़ दो तो ब्रह्म की है, परमार्थक सत्ता केवल ब्रह्म की है, दो सत्ता बाकी बची, एक प्रातिभासिक सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता किसकी है, जगत की, जगत की है व्यवहारिक सत्ता। और जगत की केवल कहने से कहां समझ में आता है, किसी ने बोल दिया आपको कि व्यवहारिक सत्ता जगत की है तो कैसे, तो उसका दृष्टांत महात्मा लोग गुरु लोग देते हैं कि जैसे रज्जू में सर्प है ना, रज्जू में सर्प की सत्ता कौन सी है, नहीं व्यवहारिक। जैसे सशे के श्रृंग हैं, सशे के श्रृंग हैं वो तो कहीं किसी को देखे नहीं गए, या रज्जू में सर्प की मान लो प्रातिभास की सत्ता, रज्जू में सर्प की प्रतीत होता है, प्रतीत होता है ना, है नहीं। फिर बताएंगे, यदि इतना यहां पर बता दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसी विषय पे आओ आप। कहते हैं कि कहां चल रहे थे हम, यही कहते हैं कि वहां पर व्यवहार जिस अवस्था में जा करके हमारे इंद्रियों का लय हो जाता है और पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के जागृत अवस्था के संस्कारों से रचित सृष्टि का जहां पर दर्शन होता है उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था में जीव कहाँ रहता है, उसकी वाणी क्या है, उसका भोग क्या है, उसकी क्रिया क्या है, यह प्रश्न फिर आ गया। तो स्वप्नावस्था में जीव कहाँ रहता है, जीव का स्थान है कंठ। जागृत अवस्था में जीव नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में रहता है, और भोग उसकी वाणी क्या है, मध्यमा, मध्यमा उसकी वाणी है, और भोग कौन सा है, सूक्ष्म, क्योंकि विषय सूक्ष्म है तो भोग भी सूक्ष्म है। और उसके बाद क्या वासनामय विषय है ना, सूक्ष्म कैसे हैं विषय, वासना है केवल ना विषयों की, सामने विषय पड़े थोड़ी है, वासनामय विषय है, वासना रूप विषय है, इसलिए सूक्ष्म विषय वासना सा, वासना का भोग कर रहा है और कुछ नहीं। जो पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के जागृत अवस्था में देखे हुए ना विषय, उनकी वासना पड़ी है, केवल उस वासना का भोग करता है, इसलिए सूक्ष्म विषय हैं। तो फिर कहते हैं कि शक्ति कौन सी है, ज्ञान शक्ति है वहां पर, क्रिया शक्ति नहीं है, जागृत में तो क्रिया है, उसको क्रिया से करता भोगता है, लेकिन स्वप्न में तो ज्ञान से केवल भोगता, साक्षी रूप में देख रहा उसको, ज्ञान का मतलब साक्षी रूप में। और स्वप्न में गुण कौन सा है, सत्व गुण, सत्व गुण है, रजो नहीं है वहां पर, सत्व गुण का कार्य है ज्ञान, क्योंकि जब सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे स्थिति होती, तो ज्ञान वैसे वैसे अनुभव होता है, तो वहां पर सत्व गुण है। और स्वप्न के अभिमान करने वाले जीव का नाम क्या है, तेजस, तेजस नाम है। तो ये कहते हैं कि पांच भौतिक पदार्थों से भिन्न अंतःकरण में स्थित केवल संस्कारों द्वारा रचित पदार्थों को तेजोमय पदार्थ कहते हैं, तेजस नाम उसका तभी पड़ा जब वो तेजोमय सृष्टि का अभिमानी है। तो तेजमय सृष्टि कौन सी है, जो पांच भौतिक पदार्थों से भिन्न है, ये जो पांच भौतिक भूतों से बने हुए इनको पांच भौतिक कहते हैं, तो ये यहां वहां पर कौन सी सृष्टि, पांच भौतिक सृष्टि नहीं है, इन पांच भूतों से बनी हुई सृष्टि वहां पर नहीं है। तो कहते हैं कि पांच भौतिक पदार्थों से भिन्न और अंतःकरण में जो स्थित हैं केवल संस्कार, उन संस्कारों के द्वारा रचित जो पदार्थ है ना उनको कहते हैं तेजोमय पदार्थ। तो उन तेजोमय पदार्थों का भोग कर अभिमान करता, इसलिए इसको तेजस कहते हैं। और उन पदार्थों का स्वप्न में उपभोगता होने से स्वप्न के अभिमानी जीव को तेजस कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल देह के अभिमान को त्याग कर सूक्ष्म और कारण देह का अभिमानी, दो अवस्था का वहां पर रहता है, एक तो स्वप्न का और दूसरा कारण देह का, मतलब एक इस शरीर का सूक्ष्म शरीर का और दूसरा कारण शरीर का दोनों का अभिमान करता है, साथ ही स्वप्न अवस्था का अभिमान करता है, इसलिए उसको कहते हैं तेजस नाम से उसको कहते हैं। तो फिर बात आगे फिर वही हुई कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो स्वप्न अवस्था है ये जब होती है तब भी मैं जानता हूँ, जब ये स्वप्न अवस्था नहीं रहती कहाँ जागृत में अथवा सुषुप्ति में तब भी मैं जानता हूँ, इसलिए ये जागृत जो स्वप्न अवस्था है ये मैं नहीं और ये मेरी नहीं, मैं इसका जानने वाला दृष्टा घाटपट का जैसे दृष्टा हूँ ऐसे ही मैं इसका दृष्टा हूँ। ये दो अवस्था का विवेचन किया और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं, पंचदशीकार का यहाँ पर एक लक्षण बताया कि सर्व प्रकार ज्ञान उपसंहारे बुद्धे कारणात्मना अवस्थान में सुषुप्ति। ये कहते हैं कि सर्व प्रकार के जो विशेष ज्ञान है, जब हम जागृत में होते हैं तो हमारे को विशेष ज्ञान होते हैं, तो जहां पर सर्व प्रकार के विशेष ज्ञानों का उपसंहार हो जाता है, उपसंहार मतलब विशेष ज्ञान जहां पर लय हो जाते हैं, जो हमारी विशेष ज्ञान वाली वृत्ति है ना, ज्ञान से क्या लेना, वृत्ति ज्ञान, विशेष ज्ञान से क्या लेना, वृत्ति ज्ञान, सामान्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं होता, विशेष ज्ञान ही जो वृत्ति के द्वारा होता है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है, शब्द बीच बीच में जब निकलते हैं ना तब उसको खुलता है, हमने बोल दिया कि वृत्ति ज्ञान को कहते हैं विशेष ज्ञान, तो वृत्ति किसको कहते हैं, अंताकरण परिणाम वृत्ति, अंताकरण का बदल जाना, कभी उसका बुद्धि रूप में कभी मन रूप में या कभी घाटा घाट रूप में कभी पट रूप में, मतलब अंताकरण का बदलना ही परिणाम है। तो उस परिणाम से जो ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान वृत्ति ज्ञान होता है। तो जिस अवस्था में जा करके वृत्ति ज्ञान उपसंहार हो जाते हैं विशेष ज्ञान, और बुद्धि की कारण रूप से जो अवस्थिति है, जो बुद्धि हमारी है केवल कारण रूप में रह जाती है, कार्य रूप में हट जाती है, कारण रूप में रह जाती है, कारण मतलब अज्ञान, सबका कारण क्या है अज्ञान, केवल उसी रूप में रह जाती बीज रूप में, उसे सुषुप्ति कहते हैं जिस काल में ऐसा होता है। ये कहते हैं कि पुरुष निद्रा से जाग कर सुषुप्ति में अनुभव किए हुए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है, जब पुरुष जागता, जब हम जागते हैं ना तो जाग करके हम क्या कहते हैं, जो सुषुप्ति में हमने अनुभव किया था वहां पर हमने अनुभव किया किसका, सुख का और अज्ञान का, दोनों का किया था ना, जब हम गाढ़ निद्रा में गए थे तो उसमें हमने क्या किया, अनुभव किया था सुख का, वह स्वरूप सुख था ना उसका और अज्ञान का दोनों का, तो जो अनुभव किया हुआ सुख है और अज्ञान का सिमरण उसको करके कहता है कि सुखम हम अस्वापसम न किंचद अवेदिशम, मैं सुख से सोया, इतना सुख से सोया कि मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ, ये हम कहते हैं। तो वह सुख और अज्ञान का प्रकाश साक्षी चेतन रूप अनुभव से जिस अवस्था में होता है, एक तो हुआ ना सुख का अनुभव और दूसरा अज्ञान का सिमरण, ये जिस अवस्था में होता है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में भी जीव कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, और वाणी हृदय में कौन सी है, पश्यन्ति वाणी। ये कहते हैं कि उसमें भोग कौन सा करता है, जागृत अवस्था में स्थूल भोग करता है और स्वप्न अवस्था में वासना रूप भोग करता है, सूक्ष्म मतलब वासना रूप, और इस अवस्था में कौन सा भोग करता है सुषुप्ति में, तो कहते हैं कि आनंद का भोग करता है। आनंद कौन सा, निर्विकार जो सुख है जिसमें कोई विकार नहीं है। पर कहते हैं महापुरुष लोग कि जो सुषुप्ति है ना ये उदाहरण है मुक्ति में, मुक्ति में उदाहरण है सुषुप्ति। गुरु लोग हमारे को बनारस में बताते थे कि यह जो सुषुप्ति है ये मुक्ति में उदाहरण है कि जीव ब्रह्म इव न परह, जीव ब्रह्म इव न परह, कहते हैं ना शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि जीव ब्रह्म इव न परह, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म इव न परह, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या जीव ब्रह्म इव, जीव ब्रह्म ही है। अपर नहीं है, अलग नहीं है। तो कहते थे गुरु लोग कि ये जो सुषुप्ति है ये भी उस अवस्था का उदाहरण है। पर कैसे? वो कहते थे कि सुषुप्ति में भी जीव जो है ब्रह्म के साथ अभेद होता है, और तुरिया में जा करके भी होता है, होता दोनों जगह है, ब्रह्म के साथ अभेद होता है, परंतु फर्क इतना है सुषुप्ति का और जीवन मुक्ति का या ब्रह्म अवस्था का फर्क क्या है। मुक्ति तो वहां पर भी मुक्ति का उदाहरण है, फर्क इतना है कि वहां पर जब हम ब्रह्म के साथ अभेद होते हैं तो किस ब्रह्म के साथ होते हैं। बात यही है, बस प्रश्न इतना ही है कि सुषुप्ति में भी जीव जाता है ब्रह्म में, पर किस ब्रह्म के साथ अभेद होता है? अज्ञात ब्रह्म के साथ। और जब ब्रह्माकार ब्रह्म में स्थिति हो जाती तब ज्ञात ब्रह्म के साथ होता है अभेद। इतना ही है फर्क है बस, नहीं तो सुषुप्ति में सभी लोग मुक्त हो जाएं। होते तो हैं अभेद लेकिन अज्ञात ब्रह्म के साथ। अज्ञात मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना ये वस्तु हमारे को अज्ञात, मतलब हम इसको जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं, सुना है लेकिन जाना नहीं है। सामान्य रूप से हमारे को ज्ञान होता है ना जो, उसके साथ हम जाते हैं, विशेष रूप से नहीं जाते हैं। वहां पर क्यों अज्ञात है? क्योंकि अज्ञान बीच में पड़ा है। सुख तो हमारे को दिख रहा है, सुख का अनुभव हम कर रहे हैं लेकिन अज्ञान के सहित, तो अज्ञात सुख हुआ ना। अज्ञान के सहित जो सुख है वो अज्ञात सुख है, तो हम अज्ञात ब्रह्म के साथ वहां भेद होते हैं। तो जब हमारा वो भी आवरण जो हट जाता है तब जिस ब्रह्म के साथ होते वो तो पूर्ण जो व्यापक ब्रह्म है। तो ये उदाहरण है मुक्ति का लेकिन अज्ञात ब्रह्म के साथ। जहां पर स्वामी दिव्य चेतन जी बोलते थे ना हर रोज कि अज्ञात ब्रह्म के साथ हम, हमने स्वामी दिव्य चेतन जी के चरणों में बैठ करके 8-9 साल वेदांत पढ़ा उनसे जो आए थे अभी, तो वो हर रोज ये बात बतलाते थे कि अज्ञात ब्रह्म के साथ जीव अभेद होता है सुषुप्ति में। तो ये हुआ कि ये इन्होंने बताया कि सुषुप्ति अवस्था में ये निर्विकार सुख का भोग करता है, और इसकी शक्ति क्या है वहां पर? शक्ति इसकी है आवरण शक्ति, भाव अज्ञान है ना वहां पर। तो ये अज्ञान रूप शक्ति या अज्ञान की आवरण शक्ति, दो शक्तियां रहती ना, दो शक्तियों वाला अज्ञान है, एक है उसकी आवरण शक्ति, दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण और विक्षेप दोनों क्या चीज है? संक्षेप में उसका ये है कि विक्षेप और आवरण, आवरण का अर्थ है ढकना। जो अज्ञान की आवरण शक्ति है वो किसी चीज को ढक देती है, और जो विक्षेप शक्ति है वो उसमें से अन्य कोई चीज दिखाने लगती है। जैसे आवरण शक्ति ने रस्सी को ढक दिया और विक्षेप शक्ति ने सर्प को दिखा दिया। विक्षेपता अर्थ होता है चंचलता। जब ऊपर में पर्दा आ गया तो हमारी वृत्ति जो टिकी हुई थी वो चंचल हो गई। तो जब चंचल होती है तो उसमें नाना प्रकार दिखने लगता है। तो वहां पर जो है हमारी आवरण शक्ति है, विक्षेप तो नहीं है। विक्षेप होती तो हमारे को नाना प्रकार का प्रपंच दिखाई पड़ता, यही निशानी है ना कि विक्षेप नहीं है वहां पर। बिल्कुल मतलब स्थिति है लेकिन आवरण शक्ति के कारण हमारे को स्वरूप का अनुभव तो हम कर रहे हैं लेकिन अभी पर्दा जो बीच में, इसलिए अज्ञात ब्रह्म के साथ हम वहां पर अभेद होते हैं। तो आवरण शक्ति है, और गुण कौन सा है? तम गुण है। प्रवृत्ति रुक गई ना वहां पर, तमो गुण है वहां पर, प्रवृत्ति रुक गई। और सुषुप्ति के अभिमानी जीव को क्या कहते हैं? प्राज्ञ, प्राज्ञ उसका नाम है। ये सब इन्होंने उठा करके मांडुक्य उपनिषद से दिया है, उसने बहुत खोल के दिया है एक एक चीज को। यहां पर ये इन्होंने विवेचन बहुत अच्छा किया, तीन अवस्था का विवेचन किया। अब आगे तो फिर बताएंगे भी इसमें दृष्टांत कौन कौन से हैं, उसका विचार फिर कल को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।